पाकिस्तान में रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 11 बजे हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बेहजत हासिर है। पाकिस्तान में टेलीविजन के एक मारूफ मेज़बान एक कातलाना हमले के बाद संभल रहे हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों के सिलसिले का यह ताज़ा तरीन वाक़या है। हुकाम ने बताया कि हामिद में निजी टेलीविजन चैनल जियो के प्रोग्राम मेज़बान तवक्कु है सेहतमंद हो जाएंगे। पुलिस ने बताया कि एक कार और मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्ला अफराद ने कराची एयरपोर्ट के करीब मीर की कार पर फायरिंग की थी। हामिद मीर पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ नाइंसाफ़ी और जुल्म व सितम के बारे में खुलम खुला बात करते आए और इस साल के आगाज़ में उन्होंने कराची में मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर हमले की मजम्मत भी की। हामिद मीर पर यह पहला हमला नहीं। जियो ने बताया कि इस्लामाबाद में उनकी गाड़ी के नीचे धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था, लेकिन उस वक्त धमाका नहीं हुआ। उधर पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने सीनियर सहाफी हामिद मीर पर कातिलाना हमले की अदालती तहकीकात का ऐलान करते हुए 3 रुकनी जुडिशल कमीशन की तश्कील का फैसला किया है। अमरीका ने भी सहाफी हामिद मीर पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में हमलों का यह सिलसिला बायस तशवीश है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी शहर पेशावर के मजाफाती इलाके बडबीर में मुश्तबा जंगजुओं ने एक घर और मलहका हुजरे पर हमला करके 3 अफराद को अगवा कर लिया। यह घर अवामी नेशनल पार्टी के मकतूल लीडर मियां मुश्ताक का है, जिन्हें इस साल के अवाल में उनके एक ड्राइवर और करीबी साथी समेत गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। एक दूसरी खबर के मुताबिक बनू जिले में मुश्तबा अस्करीत पसंदों ने ANP के मकामी लीडर को फायरिंग करके हलाक कर दिया। पाकिस्तान के सूबा सिंध में इतवार के रोज़ अला सुबह एक मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादम से कम अज़ कम 42 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक और जख्मी होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक एक मुसाफिर बस डेरा गाजी खान से कराची जा रही थी कि कौमी शाहराह पर पुन आखिल छावनी के करीब मुखालिफ सम्त से आने वाले ट्रॉलर से टकरा गई। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारत के सूबा बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लीडर और वहां से पार्टी के उम्मीदवार गिरिराज के एक मुतनाज़े बयान से उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक दुश्वार सूरत हाल में पड़ गई है। रूस ने कहा है कि मशरकी यूक्रेन में ईस्टर के मौके पर की गई फायरबंदी के खिलाफ वर्जी करते हुए किया जाने वाला मौलिक हमला इश्तियाली कार्रवाई है, लेकिन यूक्रेन के अहदेदारों का कहना है कि इस वाक़े की तफसीलात अब वाज़ेह नहीं। अहदेदारों ने बताया कि रूस नवाज अलहदगी पसंदों के ज़ेर इंतजाम एक चौकी पर फायरिंग में कम से कम एक शख्स हलाक हो गया। बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक मरने वालों की तादाद 4 है, जिनमें अलहदगी पसंद भी शामिल हैं। रूस ने अपने एक बयान में कहा कि उसे जंगजुओं की इस इश्तियाली कार्रवाई पर बहुत गुस्सा है और इस हमले से साबित होता है कि केव के हुकाम में कौम परस्तों और इंतहा पसंदों पर काबू करने और उन्हें गैर मुसल्ला करने की मंशा का फुकदान है। मॉस्को ने जोर दिया है कि यूक्रेन अपने मुसल्ला इंतहा पसंदों को लगाम दे, लेकिन यूक्रेन के जिस ग्रुप को इस हमले के लिए मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया उसने इस वाक़े में मुलव्वस होने से इनकार किया और इसके पसे पर्दा रूस की खसूसी अफवाज का हाथ करार दिया। जनूबी कोरिया में गोताखोर डूब जाने वाली सेवॉल नामी फेरी के अंदर दाखिल हो गए हैं ताकि मजीद लाशों को बाजयाब किया जा सके। इतवार के रोज़ हलाक होने वालों की तादाद 56 तक पहुंच गई, जबकि 246 अफराद बदस्तूर लापता हैं। इनमें से बेशतर हाई स्कूल के तालब इल्म हैं। हुकाम ने अभी तक तबाही की वजह का तायुन नहीं किया। शाम ने ऐलान करदा कीमियावी हथियारों की मटेरियल का 80% हिस्सा या तो हटा दिया है या फिर उसे तबाह कर दिया है। अक्वाम मुत्तहदा और कीमियावी हथियारों की रोकथाम की तंजीम के मुश्तरका मिशन के लिए खसूसी राबताकार सिगरेट काग ने कहा है कि अगर इसी रफ्तार से काम जारी रहता है तो शाम अप्रैल के आखिर तक मुकर्रर करदा डेडलाइन तक मतलूबा हदफ हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। काग ने कहा कि नकलो हमल में तेज़ रफ्तारी मुस्बत और ज़रूरी है ताकि डेडलाइन से कबल पेशरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। शाम के सदर बशार अल असद ने दमिश्क के मजाफात में गुज़श्ता बरस सारीन गैस के हमले में सैकड़ों अफराद की हलाकत के बाद बैनुल अक्वामी दबाव के बाद कीमियावी हथियारों के ज़खायर तलफ करने पर रजामंदी का इजहार किया था। वाशिंगटन और मगरबी हलीफों ने मिस्टर बशार अल असद की अफवाज को सारीन गैस इस्तेमाल करने पर मोर्द इल्ज़ाम ठहराया, जबकि शामी हुकूमत ने खाना जंगी में मुलव्वस बागियों को इसका जिम्मेदार करार दिया। शाम में यरगमाल बनाए गए 4 फ्रांसीसी सहाफ़ी वतन वापस लौट पहुंच गए हैं। फ्रांस के सदर फ्रांसोवा ओलां ने पेरिस के मजाफात में फौजी अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। उनके साथ सहाफ़ियों के ख़ानदान और साथी भी मौजूद थे। तुर्की के खबरस्तान इदारे डोगन न्यूज़ एजेंसी या DHA ने कहा कि तुर्क फौजियों ने सहाफ़ियों को शाम की सरहद के करीब देखा, उनके हाथ बंधे हुए और आंखों पर पट्टियां थीं। गुज़श्ता जून में 2 अलग वाक़यात में उन्हें यरगमाल बनाया गया था। बताया जाता है कि चारों सहाफ़ी तंदुरुस्त हैं, अगरचे हिरासत में सूरत हाल सख्त रही है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि शाम सहाफ़ियों के लिए दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क है। اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے ان دا نیوز. یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری.
پروگرام ان دا نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. گزشتہ روز کراچی میں ممتاز صحافی حامد میر پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا, جس کا الزام حملے کے کچھ ہی دیر بعد ان کے بھائی نے فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی پر عائد کیا. فوج کے محکمہ تعلقات عامہ یا آئی ایس پی آر کے جاری کردہ ایک بیان میں حامد میر پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ بغیر شواہد اور ثبوت کے آئی ایس آئی یا اس کے سربراہ پر الزامات لگانا قابل افسوس اور گمراہ کن ہے. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ حقائق جاننے کے لیے حملے کی فوری اور آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں. ادھر وزیر اعظم نواز شریف نے تحقیقات کے لیے ایک 3 رکنی جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اس سلسلے میں باقاعدہ درخواست کی جائے گی. انہوں نے حملہوروں کی نشاندہی کرنے والوں کے لیے 1 کروڑ روپے کے انعام کا بھی اعلان کیا ہے. دنیا بھر میں اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا جا رہا ہے, جو یقیناً ایک انتہائی شرمناک فعل ہے, اور سب کی دعا یہ ہے کہ حامد میر جلد سے جلد صحت یاب ہوں, اور یہ حملہ انتہائی قابل مذمت ہے. امریکہ نے بھی اس حملے کی شدت سے مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں حملوں کا یہ سلسلہ باعث تشویش ہے. وزارت خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ آزادی اظہار اور فعال جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ محفوظ رہتے ہوئے صحافی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں سنبھال سکیں. انہوں نے حکومت پاکستان پر زور دیا کہ وہ ایسے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جو اتنے گھناونے افعال کے ذمہ دار ہیں. ادھر ملک بھر میں اس حملے پر احتجاج بھی ہو رہا ہے. ہمارے ساتھی کامران حیدر کی ایک مختصر رپورٹ. انہوں نے ایک مظاہرے کے دوران ایک ٹی وی پروگرام کے میزبان جاوید چودھری سے بات کی, جن کا کہنا تھا
بیسیکلی صحافت اس وقت پاکستان میں ایک ایسا ستون ہے کہ جس پہ معاشرے کو بہت زیادہ اعتماد ہے. اس ستون کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. ہم دہشت گردوں کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں, جس ہم سوسائٹی کے ان سیکٹرز یا ان طبقوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ صحافی اس طرح آزادانہ کام کر سکے پاکستان میں.
حامد میر پر حملے کے کچھ ہی دیر کے بعد ان کے بھائی کی طرف سے اس کا الزام فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی پر عائد کرنے کا بیان سامنے آیا, تاہم کئی سینئر صحافیوں اور مبصرین نے اسے قبل از وقت قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات سے پہلے ایسے بیانات ملک اور اس کے اداروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. پہلی مرتبہ چند مقامی اخبارات اور ٹی وی چینلز میں بھی اس واقعے کی ذمہ داری سے متعلق مختلف آراء سامنے آئی ہیں. سینئر صحافی عامر متین اس بارے میں کہتے ہیں,
کوئی میڈیا کے سٹاک ہولڈرز ہیں, کوئی ریئل اسٹیٹ کے ٹائکونز ہیں, ان کی آپس میں جو 2 گروپوں کی لڑائیاں 3 گروپوں کی چل رہی ہیں اس میں وہ تقسیم نظر آتی ہے. یہ لڑائی مالکان کی ہے, اور کیونکہ مالکان کی ایڈیٹوریل مسائل میں اتنی زیادہ انٹرفیرنس ہو گئی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا. اسی لیے آج بڑی شرمناک بات ہے کہ مختلف اخباروں میں اس کا مختلف قسم کا اینگل لیا گیا تھا.
انسانی حقوق اور صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیموں کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 1.5 دہائی سے زائد عرصے میں 90 سے زائد صحافی مارے جا چکے ہیں. طالبان کی طرف سے بھی ایک بیان میں صحافی حامد میر پر حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا, جبکہ پاکستان فوج کے ترجمان نے آئی ایس آئی پر الزامات کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کی آزاد تحقیقات ہونی چاہیے.
ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب امین یوسف صاحب, جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے, اور جنرل طلعت مسعود صاحب جو ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم صاحبان. امین یوسف صاحب, میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے جو کوششیں آپ کی تنظیم کر رہی ہے ایک بہت عرصے سے, کیا اس کے نتائج یہی سامنے آ رہے ہیں جو کل ہوا؟
بس